نحمد و نصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي کہ آج ہم بات کریں کہ اپنے بچوں کے بارے میں بچہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو ہمارا مرکز اور محور بھی ہوتا ہے اور ظاہر ہے اس کے لیے ہمیں پریشانی بھی ہوتی ہے اور اس کی خوشی میں ہماری خوشی بھی ہوتی ہے کئی دفعہ زندگی میں ایسے مقامات آتے ہیں کہ ہم پریشان ہوتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی رہنمائی کیسے کریں اور جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ایسے مسائل یا ایسی سچویشنز ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ واقعی ہمارے پاس کئی دفعہ جواب نہیں ہوتا یہ بات میں اکثر پیرنٹس کو بھی کہتی ہوں ہر دور میں بچوں کے جو ایشوز رہے ہیں وہ والدین کے لیے ایک سٹرگل ہی رہے ہیں کیونکہ ہر دور میں سوسائٹی تبدیل ہوئی ہے یعنی آپ دیکھیں کہ جب ہمارے زمانے میں کمپیوٹر نہیں تھے انٹرنیٹ نہیں تھا فون نہیں تھے لیکن ہمارے والدین کے چہرے پہ ایسی ہی پریشانی تھی اب ہمارے بچوں کے ہاتھ میں گیجٹس ہیں چاہے چھوٹا ہے چاہے بڑا ہے بہت سی ایسی چیزوں کا ہم کو پتہ ہے یا ایسی چیزیں وہ استعمال کر رہے ہیں جو ہم نے نہ اپنے بچپن میں دیکھی نہ اپنی جوانی میں دیکھی انشاءاللہ جب ان کی اگلی نسل آئے گی تو وہ یہیں تک ہوگی ان کے ہاتھ میں یہ کمپیوٹر ہوں گے پتہ نہیں اور کیا کچھ ہوگا اور ہمارے جو بچے ہیں جب وہ ہماری عمر پہ پہنچیں گے تو وہ اسی طرح سٹرگل کر رہے ہوں گے تو ہمیں بات کیا سمجھ آتی ہے کہ ہر دور میں چیلنجز رہتے ہیں یہ بات سمجھنے کی ہے والدین کے لیے یعنی ہم اپنی فرسٹریشن میں کئی دفعہ نا جو فوکس ہے نا اس کو لوز کر جاتے ہیں دوسری امپورٹنٹ چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہر دور میں جو چیلنج آ رہے ہیں ہم نے ان سے ڈیل بھی کرنا ہے ہم نے ان کا سلوشن بھی ڈھونڈنا ہے اور ہم نے کوشش کرنی ہے کہ بہترین طریقے سے ان کو حل کریں مجھے کل میری ایک جاننے والی ہیں ان کا کسی اپنے مسئلے کے لیے فون آیا کافی پریشان تھیں مسئلے بھی بہت بڑے تھے بہت بڑا پیکج لے کے بیچاری چل رہی تھیں بہت پریشانیاں تھیں تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے میں تو ایک نتیجے پہ پہنچی ہوں کہ یہ زندگی ٹیسٹ ہے یہ امتحان ہی رہنا ہے اگر ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ یہاں پہ کوئی ٹیسٹ نہ ہونا تو یہ ہماری حماقت ہے دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں ایک ٹیسٹ ختم ہوتا ہے تو اگلا شروع ہو جاتا ہے مسئلہ یہ ہے شیطان نے ہمیں ایسا دھوکہ دیا ہوا ہے کہ ہم چھوٹے مسئلوں کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اب بڑے مسئلے ہمیں نظر نہیں آ رہے یعنی بچے کی شادی ہونا بچے کا فلاں یونیورسٹی میں داخلہ ہونا بچے کا ہوم ورک کرنا بچے کے نمبر لینا بچے کی بیماری یا گھر بننا بجٹنگ کرنا شوہر کا ظالم ہونا کوئی آپ مسئلہ سوچ لیں کہ سب چھوٹے مسئلے ہیں اصل مسئلہ کون سا ہے جب ہم نے مرنا ہے جیسے کہ قرآن میں ہمیں بار بار بتایا جاتا ہے کہ وہ ایسا وقت ہوگا کہ ماں باپ بہن بھائی آپ کو پہچانیں گے نہیں آپ امیجن کر سکتی ہیں دنیا میں ہم یہ سوچ نہیں سکتے تو حقیقت کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ یہاں کی جو چیز بھی ہے یہ ٹیسٹ ہے اگر ہمیں یہ سمجھ آ جائے نا یہ جو ہمارے دماغ پہ ہر وقت وہ کلاؤڈنگ ہے ایسے گھنگور گھٹائیں ہوتی ہیں اچھا ہمیں کوئی کہے ہم کہتے ہیں میں کھانا نہیں کھا سکتی نماز نہیں مجھ سے نہیں پڑھی جا رہی دعائیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی فلاں وظیفہ بتا دو فلاں شارٹ کٹ کر دو یہ صرف تب ہماری زندگی میں ہوتا ہے جب ہم نے چھوٹے ایشو کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے اور وہ جو بڑا ایشو ہے وہ ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا تو بچوں کے لیے اگر ہم دیکھیں ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے سورۃ تحریم میں آتا ہے نا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلکم نارا کہ اے ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ میں بہت سی ماؤں کو کہتی ہوں آپ اتنا فخر کر رہی ہیں میرے بچے کے پاس یہ ڈگری ہے اس کا اتنا جی پی اے ہے اور وہ فلاں یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے نماز پڑھتا ہے تو ہمارے بچے تو بہت لاسٹ ہیں ہم سب کو اپنی اصلاح کرنی ہے ہم سب اپنی اصلاح کریں گے تو بچے ٹھیک ہیں آج کل کے دور میں بچوں کے پیرنٹنگ ایشوز کیا ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں ماں باپ کے لیے ایک بہت بڑا ایشو یہ ہے جس کے لیے ماں باپ پریشان رہتے ہیں پیرنٹ دا چائلڈ یو ہیو اینڈ ناٹ دا چائلڈ یو وش یو ہیڈ ہم ہر وقت کسی نہ کسی سے مقابلہ کرتے ہیں یہ بہت بڑا چیلنج بن چکا ہوا ہے میرا بچہ بیٹھتا نہیں میری نند کا میرے دیور کا میری بہن کا میرے بھائی کا میری ہمسائے کا بچہ بیٹھنا شروع ہو گیا ہے اس کے دانت نہیں نکلے اس کی ہائٹ اتنی ہے میرے بچے کی ہائٹ اتنی نہیں اسکول گئے تو وہ اتنے نمبر لے رہا ہے میرا بچہ نہیں لے رہا یہ بہت ڈرین کرتا ہے ये आपको फोकस पे नहीं रहने देता। शादियों में फलां की बेटी इतनी आगे आगे थी, उसके रिश्ते इतने आ जाएंगे, एक तुम बेवकूफ़ पीछे बैठी हुई हो, तुम आगे क्यों नहीं बैठती? लड़के को कहा सब फंसा लेते हैं कि मेरा ही बेटा बेवकूफ़ है, इसको फंसाना नहीं आता। दूसरी चीज़, हम अपने बच्चों को डिस्कम्फर्ट, पेन और कॉन्सिक्वेंसेस से सीखने नहीं देते। हम इतने ओवर प्रोटेक्टिव हो गए हैं अपने बच्चों के मामले में और हमने इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ओन कर ली हैं। मसलन आपका बच्चा अगर सुबह उठता है, स्कूल में उसकी कोई कॉपी ले जानी थी और वो बैग में नहीं है, तो माँ क्या करती है? एक टांग उसकी किचन में वो नाश्ता बना रही है, दूसरी टांग उसकी हर कमरे में जा रही है जहाँ वो हर चीज़ में से वो ढूंढ रही है, और बच्चा या तो गेम लगा के बैठा हुआ है, या वो टेंट्रम थ्रो कर रहा है, या उसने रोना धोना ही बस सिर्फ मचाया हुआ है कि मेरी चीज़ें नहीं मिल रही हैं। यानी करना क्या होता है उसको, माँ को अपने बच्चे को इतना डिसिप्लिन करे कि वो रात को बैग में रखे, और अगर किसी वजह से उसने बात नहीं सुनी और वो सुबह आके पैनिक बटन दबा रहा है कि अम्मा मेरी फलां चीज़ नहीं मिल रही, लेट दैट चाइल्ड सफ़र, उसको डांट पड़ने दें उस दिन, उसको स्कूल में क्लास में खड़ा होने दें उस दिन। हम तो कहते हैं कि हमारे बच्चे को कोई तकलीफ ना पहुंचे, मैं जो हूँ हर चीज़ का ज़िम्मा ले लूँ। यानी हम उन जगह पे टॉर्चर करते हैं, लेकिन जो नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज हैं उनसे बच्चों को सीखने नहीं देते। अगर बच्चे ने आपके खाना नहीं खाया टाइम पे, आपने उसको बहुत वार्निंग्स दी, बहुत उसको डराया धमकाया, नहीं खाया उसने, अब वो दो घंटे बाद या डेढ़ घंटे बाद आपके पास आया और कहता मामा भूख लगी है, क्या करेंगे? किचन खोलेंगे, रोटी पकाएंगे, चीज़ फ्राई करेंगे, उसको देंगे, क्या करना चाहिए उस वक्त? जबकि पहले जब खाना लगा था हमने उसको तकरीबन 10 दफ़ा वार्निंग दी थी कि अगर तुम टाइम पे ना आए तो खाना नहीं मिलेगा। कॉन्सिक्वेंस यही था ना
जी,
कि खाना नहीं मिलेगा, तो क्या करना चाहिए था?
टाइम इज़ ओवर,
मुझे भूख लगी है, फल पड़ा खा लो, दूध पड़ा पी लो, जो चीज़ वो आप खुद कर सकता है उसको खुद करने दें। अच्छा, तीसरा डिलेमा जो हमारा होता है या जो हमारा एक स्ट्रेस हमें देता है बहुत ज़्यादा, जजमेंट लोगों की निगाहें। हर माँ, ठीक है उसकी चाहे तरबियत नहीं हुई, उस बेचारी को पेरेंटिंग का इतना नहीं पता, लेकिन सबसे ज़्यादा खैर ख्वाह बच्चे के लिए वो है, और वो अपने बच्चे के लिए अपनी तरफ से सही फैसला करती है। अच्छा, अब उसके लिए स्ट्रेस क्या है? सबकी निगाहें, सबके जुमले। बच्चे को बुखार हुआ, किसी ने कहा बुखार क्यों हो गया, अब उसमें कई दफ़ा हिडन मैसेज क्या होता है, तुम इसको सॉक्स नहीं पहनाती, तुम लापरवाह हो। अब माँ क्या करती है? माँ ने जहन्नम की आग से क्या बचाना है, उसका स्ट्रेस लेवल इतना हाई हो जाता है कि आई एम नॉट अ कॉम्पिटेंट मदर, वो जाके छलांग लगा के क्या करेगी, बच्चे की पिटाई, बच्चे को कमरे में लेगी, बच्चे के ऊपर सख्ती। आप देखें, आप मार्केट गए हैं कहीं और अगर आपके बच्चे ने सही कपड़े नहीं पहने हुए, और सही कपड़ों से क्या मतलब है, जो दुनिया के स्टैंडर्ड के मुताबिक सही है। आप देखेंगे बच्चों पे एक एज आती है जब उनको कोई पुरानी फटी हुई शर्ट या पैंट या जूती पसंद है, आप उनकी मिन्नत समाजत कर रहे हैं, आप उनको डांट रहे हैं, लेकिन वो कपड़े चेंज करने के लिए तैयार हैं, क्या करते हैं उस वक्त? मसलन आपने शादी पे जाना था और जब आप शादी पे जाने के लिए निकले हैं तो आपके बच्चे ने वो नहीं पहना सही जो जूती, और वहाँ आपकी एक फ्रेंड मिल गई। अगर बच्चे को एक चीज़ कम्फर्ट दे रही है, लेकिन हम उसको लोगों की नज़र से क्यों जज कर रहे हैं? मसलन आपके बच्चे को पराठा पसंद है, आपका बच्चा एक ऐसे स्कूल में जाता है जहाँ बहुत बच्चे ट्रेंडी स्नैक्स लाते हैं, आप सिर्फ पराठा उसको इसलिए नहीं उसमें देती, लोग कहेंगे कैसी माँ अपने बच्चे को कैसा नाश्ता बना के दे रही है। हम अपनी पेरेंटिंग को असेस करते हैं दूसरों की नज़र से, जबकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने अपने बच्चे को अपनी नज़र से देखना है। चौथी चीज़, बच्चे कई दफ़ा कहते हैं, बहुत नाराज़ हो जाते हैं ना, छोटे हों बड़े हों, आई हेट यू, आप बहुत ज़ालिम है। अच्छा, जब बच्चा ये कह दे कैसा लगता है?
बहुत दुख होता है,
दुख होता है कि तो मैं अपने बच्चे का इतना ख्याल रखती हूँ, सबकी अम्मियाँ ले देती हैं, आप ही लेके देती हैं, आपने अपने बच्चे को कहा तुम जब तक फलां एज के नहीं होगे मोबाइल नहीं मिलेगा, अब आपके बच्चे ने आपको ना रोज़ बताना शुरू किया फलां के पास भी है, फलां के पास भी है, आप जालिम माँ हैं, आप देती नहीं हैं। लोग अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, आप मुझसे प्यार नहीं करती। अच्छा, आप क्या फैसला करती हैं उस वक्त? मैं ले देती हूँ, हाँ आई हेट यू, आप बुरी हैं, बाकी सबकी माएँ बहुत अच्छी हैं, सबके पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, हमारे घर में तो कोई अच्छा खाना नहीं बनता, सबके घरों में इतना अच्छा खाना बनता है, जब हमारे बच्चे ही कह रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, उस वक्त तो लेक्चर देते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, फौरन थोड़ी देर बाद कहते हैं अच्छा पिज्ज़ा मंगवा लो, अच्छा चलो मार्केट जा रही मैं तुम्हें वहाँ से कुछ खिला दूँ, हम कहते हैं देखो बाकी लोग अपने बच्चों को क्या कुछ देते हैं, मुझे भी देना चाहिए। अब आप देखें यहाँ आपकी पेरेंटिंग मिस्टेक आ गई, फिर आपका ये बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। पांचवी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है, बच्चों को पालने में एक टर्म होती है लेटिंग गो, वो नहीं हमें आती। लेटिंग गो क्या होता है, ये हमारा बच्चा हमें खुद सिखाता है। मसलन आपका छोटा बच्चा था न्यू बॉर्न, और वो जब आप नीचे लिटाते हैं रोना शुरू कर देता है, फिर आप उसको गोद में लेते हैं, चुप हो जाते हैं। एक ज़माने में बुजुर्ग कहते थे, अभी भी कई दफ़ा कहते हैं इसको गोद की आदत ना डालना। चलिए आप गोद की आदत डाल लें, आपने हर वक्त उसको गोद में उठाया है, जब क्रॉल करने की एज पे आ गया है क्या करेगा वो बच्चा, जब आप उसको गोद में बिठाएंगी वो अकड़ेगा, वो अपने आप को छुड़ाएगा, ये होती है लेटिंग गो। अच्छा आगे देख लें, आपके हाथ से खा रहा था, चार माह का था, पांच माह का था, लेकिन आप देखते हैं अल्लाह आहिस्ता बदल गया है, जो मैं सामने रखती हूँ कहता है मैंने ये नहीं खाना, मैंने ये खाना है, चम्मच पकड़ता है, मैस बहुत करता है लेकिन चम्मच पकड़ के खुद खाना चाहता है, ये क्या है, अल्लाह ताला ने उसको एक बिहेवियर सिखाया है हर उम्र के हिसाब से, जो वो करेगा तो वो हेल्दी होगा, वो नॉर्मल होगा, उसकी ग्रोथ होगी, हम वो करने नहीं देते। आप उसके साथ बैठे उसे सुपरवाइज करें और वो खुद खाएं। चार साल के बच्चे का तो जवाब ही नहीं बनता ना कि आप उसको खाना खिला रहे हैं। मैं अक्सर माओं को कहती हूँ अगर आपका बेटा है तो मुझे आपकी बहू से हमदर्दी है, और अगर आपकी बेटी है तो मुझे उसके ससुराल वालों से और उसके बच्चों से हमदर्दी है। You have to teach them. आज भी एक मदर ने मुझे यही पूछा, मैं फिर मैं क्या करूँ, मैंने कहा आप उसे खिलाना छोड़ दें, तो उन्होंने कहा वो नहीं खाएगा, मैं कहा चलें इमेजिन करते हैं थोड़ी देर के लिए कि वो नहीं खा रहा, एग्जैक्टली कोई बात नहीं क्या होगा। दूसरा ये कि जितनी उसकी एज है ना, मसलन अगर चार साल है ना उसका हाफ कर लें, टू ईयर्स लगेंगे उसको उस लेवल पर दोबारा आने में जो आपने गलत काम किया अनवाइंड करने में। इसीलिए तो फिर जब शादियां होती हैं तो हमारा रोना पिटना शुरू हो जाता है, बदल गया बच्चा, इसलिए हमने हर उम्र में जो करना चाहिए था वो उसको करने नहीं दिया। इसीलिए तो हमारी सोसाइटी में 17 साल का बच्चा छुई मुई है, जबकि इस्लामिक हिस्ट्री में 17 साल का बच्चा मोहम्मद बिन कासिम था। इसीलिए हमारे बच्चों में वो दमखम नहीं है।